सारे दोषों की जड़ राग द्वेष है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष हो रहा है। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। संसार में राग जो है वह सब प्रकार से साधनों में महान बाधक है। प्राय मनुष्यों को ये राग अच्छा लगता है, पर इसका परिणाम बहुत खराब होता है। जैसे बालक को मीठा अच्छा तो लगता है, परंतु वह उसके लिए हानिकारक है, इस बात को जानता नहीं है। संसार में आसक्ति का अभाव ही वैराग्य है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामनाओं की मूल राग है, क्योंकि उसमें सुख का भान होता है। विषयों में जो सुख की प्रतीति है वह वास्तव में है नहीं, दिखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुख ही सुख के रूप में दिखता है। विवेक की दृष्टि से सुख ही दुख है, और भोगियों की दृष्टि में वो दुख ही सुख है। परंतु भोगियों की दृष्टि गलत है, क्योंकि जिसको सुख मानते हैं वो उससे दुख भोगते हैं। संसार के सुखों के अंदर फंसे रहने वाले व्यक्ति का धैर्य, शौर्य, गंभीरता, संतोष, पवित्रता इत्यादि इत्यादि गुण नष्ट हो जाते हैं। दूसरों को अधिक सुखी देखकर भोगी आदमी के मन में संताप होता है। सो सभी सुखों में दुख ही मिला हुआ है। अपने अंदर भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का झगड़ा चलता है। सात्विक वृत्ति है वह सुख को हटाने के लिए बोलती है, राजसी है वो उसमें लगाने के लिए बोलती है, तामसी है वो आलस लाती है। सज्जनों, इस झगड़ों से आप कब तक लड़ते रहोगे? जिंदगी तो हमारी यूं ही खत्म हो जाएगी। आगे काल है, उसको देखो। अभी वर्तमान को मत देखो, वर्तमान के आगे काल लगा हुआ है। काल, वर्तमान काल, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संसार का सुख है वो क्षणिक है और अल्प है। सुख का आभास है, सुख है नहीं। यदि वास्तव में सुख होता तो नष्ट नहीं होता। वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से वैराग्य होता है। संसार के विषयी पुरुषों के साथ बैठने उठने से संसार का सुख ही सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वैराग्यवान के पास रहने से उसको ये सब सुख तुच्छ मालूम देते हैं। वीतराग विषयम व चित्तम। पातंजल योग शास्त्र में लिखा है कि जो वैराग्यवान का चिंतन करता है उतने में ही वो निहाल हो जाता है। वैराग्य से अधिक आनंद उपरामता में है, उपरामता से बढ़कर भगवान के ध्यान में है और भगवान के ध्यान से भी बढ़कर भगवान के प्रेम में है। भगवान के प्रेम के आनंद से बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। संसार रूपी वृक्ष है, अनादि काल से इसकी जड़ें हमारे अंदर बैठी हुई है, इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काट दो। ये आपके वैराग्य से कटेगा, मेरे काल चक्र से जड़ें नहीं कटेंगी। वृक्ष कटेगा, जड़ नहीं कटेगी। भगवान कहते हैं कि वैराग्य रूप शस्त्र से तुम काटो और काल रूपी चक्र से उसको मैं काटता हूं। फिर भी तुमको वैराग्य यदि नहीं होता है तो ये वृक्ष वापिस हरा भरा हो जाएगा। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। ऐसे वैराग्य के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काट डालो, कोई भी संसार का विषय सामने आ ही नहीं सकता है। संसार को दुख ही दुख रूप से देखना, ये संसार को संसार रूपी वृक्ष को जड़ से काटना है। उससे भी बढ़कर परमात्मा के ध्यान में आनंद है, उस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर जीव वापिस लौटता नहीं है। वो साक्षात परमात्मा है, उस परमात्मा की शरण हो जाओ। वो परमात्मा आपका अपना है, किसी और का नहीं, अपना है, जिससे ये संसार चिरकाल से स्थिर है। उस परमेश्वर का ध्यान करना ये उनकी शरण है। परमात्मा का ध्यान ही ऐसी शरण है जिसके लिए भगवान यहां बोलते हैं। बार बार ध्यान करते करते फिर मन उसमें रम जाता है, जैसे पानी के अंदर मिश्री डालने पर फिर मिश्री उस पानी के अंदर घुल जाती है। पानी और मिश्री को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा में प्रेम हो जाने पर फिर हम और परमात्मा दो नहीं रह जाते। मान प्रतिष्ठा बड़ाई औरों में अच्छे कहलाने की भावना, ये सब तुच्छता है, ये नष्ट हो जाएगी। ये सब तो मोह के कारण से ही है ना। तो अज्ञान का नाश होता है तो मोह का नाश होता है, मोह का नाश होता है तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा अच्छा कहलवाना विषय प्राप्ति ये सब मोह नष्ट हो जाता है। और ये अमृत का पान करना है। संसार के लोग तो विष का पान करते हैं, जैसे मदिरा का पान करने वाला झूठे ही मस्ती में रहता है, उसकी मस्ती को देखकर दूसरे लोग घृणा करते हैं। ऐसे ही संसार के विषयों में जो विषयों का जो पान करता है, उसमें जो सुख मानता है, वह निंद्य है। ऐसी मस्ती नहीं चाहिए। सुख दुख आदि से बिल्कुल रहित हो गया है वही उस परमात्मा के पद को प्राप्त कर मस्त हो सकता है। वहां जाकर वापिस नहीं लौटता। जैसे स्त्री है, वह ससुराल जाने के बाद वापिस पीहर लौटती नहीं है, ससुराल की हो जाती है, किसी काम से वह पीहर आती भी है तो वो पीहर से संबंध नहीं मानती है, अंदर से ससुराल से जुड़ी रहती है। इसी प्रकार से संसार का व्यवहार करने वाले, साधन में लगे रहने वाले पुरुष पीहर में रहने वाली स्त्री के समान रहते हैं। त्रिलोकी के सुख को एक तरफ कर दो और एक क्षण के ध्यान का सुख दूसरी तरफ रख दो और दोनों को तोलो तो ध्यान का सुख का पलड़ा नीचा रहेगा, वो भारी है। इसलिए एक चाराना में जो काटड़ी ढोता है और यदि उसे पारस मिल जाए तो क्या वह एक आने में काठड़ी ढोएगा? जो कंगाल है और यदि उसे रत्नों की खान मिल जाए तो क्या उसकी वृत्ति कोड़ियों की तरफ जा सकती है? आप कहोगे कि कभी नहीं। ऐसी बात है, जब ये मन परमानंद में डूब जाता है और भगवान के प्रेम रूपी अमृत रस का पान करता है, वहां प्रेमास्पद से प्रेम का अथाह स्रोत हर वक्त मिलता रहता है। मानो एक महान प्रेम सागर में वो डूब ही गया है, कितना उसको आनंद का अनुभव होता है। क्या वो फिर संसार के तुच्छ भोग रूपी खड्डों में गिरेगा? कभी नहीं गिर सकता है। आप लोगों को संसार के सुख का तो अनुभव है, परमात्मा के सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए आप संसार के सुख से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। लेकिन गहराई से देखो, भगवान ने कितना अच्छा संसार बनाया। मृत्यु रूप इस संसार में कोई चीज स्थाई है ही नहीं। फिर जिन सुखों में आप सुख देखते हो, उन सुखों के अंदर आप मृत्यु क्यों नहीं देखते हो? न तो आप रहोगे, न आपकी इंद्रियां रहेगी, न आपका शरीर रहेगा, न आपका भोग रहेगा। कैसा भगवान ने कालचक्र बनाया है। ऐसे प्रेम रस को छोड़कर जो संसार के विषय भोगों में पड़ा रहता है, उसको धिक्कार है। संसार के विषय भोग तो सूकर की विष्ठा के समान है। कहां तो वो प्रभु का प्रेम रस और कहां ये मलिन संसार के विषय। ख्याल करना चाहिए, जो उस रस को पी करके मतवाला होता है, उसके सामने इंद्रलोक तक के विषय आते हैं तो वह उनको छोड़ने में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करता। परमात्मा का ध्यान करो। आपको जब भी खाली समय मिले, काम करते करते भगवान का ध्यान करो। कहीं मन संसार में चला भी जाए तो भी घबराओ मत, भगवान का ध्यान करो। भगवान संभाले रहेंगे, आप घबराओ मत। जैसे मां बच्चे को चलाना सिखाती है तो बच्चे को पहले हाथ देकर उठाती है, चलाती है, अंगुली पकड़ाती है, उसके बाद माँ चारों तरफ हाथ रखते हुए उसका ध्यान रखती है और उसका हाथ छोड़कर चलने के लिए बोलती है। बच्चा डरता है पर माँ कहती है तुम चलो। यदि गिरने लगता है तो माँ अपने आप हाथ देकर उसको बचा लेती है, माँ का हाथ स्वतः ही चला जाता है। इसी प्रकार भगवान का ध्यान करो। यदि आपका मन डगमग होता है तो माँ के समान भगवान अपने आप संभालेंगे। इसलिए आप तो अपनी तरफ से ध्यान करने की चेष्टा करो। जो अनंत है वह आकाश के समान है, उसका आभास मात्र भी दर्पण में नहीं आता है। इसी प्रकार जो विज्ञानानंद घन परमात्मा है उसका आभास मात्र भी कैसे मिलेगा। जैसे कोई आनंद का सागर हो और उसकी एक बूंद का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता हो, ऐसा जो प्रतिबिंब है वह ध्यान में प्राप्त होता है। संसार का जो सुख है ध्यान जनित सुख सागर के आगे वह बूंद के समान है। जो ध्यान जनित सुख है वो निर्मल है। जो संसार के विषयों में रमण करना है वह कादे में रमण करने के समान है। वहां जो भगवान में रमण करना है वह निर्मल सागर में रमण करना है। जैसे मछली एक अपार सागर में रमण करती है, उसी प्रकार से वह अपार असीम अनंत आनंदमय परमात्मा में रमण करता है। और जो ब्रह्मा आदि देवताओं में रमण करता है वो कीचड़ में रमण करता है। ध्यानावस्था में आनंद का अनुभव करो। जैसे चकोर चंद्रमा का ध्यान करता है, चाहे अमावस्या ही हो जाए तो भी वो मन से चंद्रमा का ही ध्यान करता है। वो ये नहीं देखता कि अभी आकाश में चंद्रमा नहीं है, मैं कैसे ध्यान करूं। ऐसे आप लोग भी ये मत सोचो कि अभी हमको भगवान मिले नहीं, हम कैसे ध्यान करें। यदि देखा जाए तो हम चकोर से भी गए बीते हो जाएंगे। क्या बात है भाई। ध्यानावस्था में जो आनंद है वह देवताओं को भी नहीं मिलता है। यदि कोई देवता प्रसन्न भी हो जाए और आपसे कहे कि कुछ मांगो, तो वो आपको परमात्मा के ध्यान का आनंद नहीं दे सकता। इसलिए देवता भी आपके सामने तुच्छ हो गए, ब्रह्मा आदि सब तुच्छ हो गए। आप उस महान सुख को आप खुद प्राप्त कर सकते हो। ऐसे सुख को छोड़कर जो विषयों में फंसे हुए हैं उनको हजारों बार धिक्कार है। सेठ जी को बोलने का अधिकार था। ये ध्यान जनित सुख का कोई भी वाणी से वर्णन कर नहीं सकता है। ज्ञान मार्ग से जो सुख बतलाया गया है उससे भी बढ़कर सुख है ध्यानावस्था में। ब्रह्म या तो मुक्तात्मा वाला जो मनुष्य है वह अनिर्वचनीय सुखों को प्राप्त करता है। यहाँ ये जो परमात्मा के सुख के अभेद रूप में साधन काल का जो सुख अनुभव करता है वह अक्षय सुख को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा प्रेम से भजने वाले पुरुषों को मैं बुद्धि योग देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भक्ति मार्ग में शेष सीमा परमात्मा की साक्षात प्राप्ति होती है। अभेद सब में एक विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण नारायण। अब इससे बढ़कर क्या कोई उपदेश होगा, क्या कोई व्याख्यान होगा। अब महाभारत में पिता में भीष्म उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश के सामने वो फीका मालूम देता है। इतना बढ़िया उपदेश है ये। अब इसका अपने से साक्षात संबंध है, इसका कोई इतना साक्षात संबंध थोड़ा ही है। ऋषि की वाणी है और वेद व्यास ने लिखा है और कहा है कि भाई ऐसी वाणी का अध्ययन करना चाहिए, इससे पुण्य होता है, कल्याण होता है, इस श्रद्धा से अपने लोगों को ये सुनना चाहिए। पर जीव का कल्याण महापुरुषों की वाणी से होता है। कल ये बात आई